ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆದರಣೀಯ ರಾಜಯೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರ್ ಭ್ರಾತಾ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಜಿ ಹಮಾರೇ ಬೀಚ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ. ಆದರಣೀಯ ಭ್ರಾತಾ ಜಿ, ಆಪ್ ಕರೀಬ್ ಪಾಂಚ್ ದಶಕೋ ಸೇ ಇಸ್ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇ ಜುಡೇ ಹುಯೆ ಹೈ. 1962 ಮೇ ಯಹ ಜ್ಞಾನ ಆಪ್ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ. ತ 1963 ಮೇ ಲಖನೌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೇ ಆಪ್ನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿಯೆ. ಔರ್ ONGC ಮೇ ಸೇವಾರತ್ ಆಪ್. 1996 ಮೇ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಕರ್ ಇಸ್ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸರೋವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಂಭಾಲ್ ರಹೆ ಹೈ. ಔರ್ ಆಪ್ ರಾಜಯೋಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಔರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಹೈ. ಔರ್ ಆಪ್ಕಿ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆ ಹೈ. ಆಪ್ ಪರ್ಯಾವರಣ ಮೇ ಅಪ್ನಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದಾನ ದಿಯೆ ಹೈ. ಆಪ್ಕಿ ಸೇವಾ ದೇಖ ಕರ್ಕೆ 1992 ಮೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಉಸ್ಮೇ ವಿಶೇಷ HRD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇ ಆಪ್ಕೋ ಪರ್ಯಾವರಣ ಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ. ಔರ್ ವಿಶೇಷ ಯಹಾ ಆಪ್ ಸೇವಾಯೆ ದೇ ರಹೆ ಹೈ. ತ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಪಡೆ ಕಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಉಸ್ಕಿ ಚಮಕ್ ಸೇ ನಹೀ ಉಸ್ಕಿ ತಾರ್ ಸೇ ಹೋತಿ ಹೈ. ತಲವಾರ್ ಕಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಉಸ್ಕಿ ಬಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಹೀ ಉಸ್ಕಿ ಧಾರ್ ಸೇ ಹೋತಿ ಹೈ. ಆದಮಿ ಕಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಪೈಸೋ ಸೇ ನಹೀ ಉಸ್ಕೆ ಸದ್ವ್ಯವಹಾರ ಸೇ ಹೋತಿ ಹೈ. ಐಸೆ ಸದ್ವ್ಯವಹಾರಿ ಅಪ್ನೆ ಆದರ್ಶೋ ಸೇ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಾನೆ ವಾಲೆ ಆದರಣೀಯ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಭಾಯಿ ಜಿ ಕಾ ಪುನಃ ಹಮ್ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಸ್ವಾಗತ ಹೈ, ಸ್ವಾಗತ ಹೈ, ಸ್ವಾಗತ.
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏಕ ಬಾರ್ ಫಿರ್ ಸೇ ಆಪ್ ಸಭಿ ಬೋಲೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ तो कल से जब से आप आए हैं तब से आप लोगों के विभिन्न अलग अलग लेसन्स हो रहे हैं. आज जब ये आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो रही थी तो मुझे एक कहानी याद आ गई. बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, शायद आप सब लोगों ने भी सुनी हो, पढ़ी हो, कि चार दोस्त थे. और पहले जमाने की बात है, गांव में रहते थे तो गांव में इतनी अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, तो उन्होंने शहर जाकर के कुछ ट्रेड, कुछ व्यवसाय सीखने का संकल्प लिया. तो जिस दिन वो सब जाने वाले थे, चारों दोस्त गांव में एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने ये निश्चय किया कि हम सब लोग अलग अलग स्थानों में जाते हैं और आज से 2 वर्ष बाद हम इसी तारीख को और इसी समय यहां पर फिर से मिलेंगे और ट्रेड सीख करके आएंगे, कुछ ना कुछ व्यवसाय जिससे कि अपनी आजीविका कमा सकें. चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में चले गए और निश्चित दिन पर, निश्चित समय पर वो चारों इकट्ठे हुए. और पहले तो चारों इकट्ठे हुए, बहुत खुशी हुई उन्हें आपस में एक दूसरे से मिलके. और जहां पर इकट्ठे हुए वहां से वो गांव की तरफ चलते जा रहे थे. तो जाते जाते रास्ते में उन्हें कुछ सड़क पर हड्डियां दिखाई दी, किसी जानवर की हड्डी थी. तो एक दोस्त को याद आया, उसने कहा, रे मैंने ऐसा ट्रेड सीखा है, ऐसी मंत्र विद्या सीखी है कि मैं इन हड्डियों को जोड़ करके, जिस भी पशु की ये हड्डी है मैं उसको जोड़ करके उसको एक स्वरूप दे सकता हूं. तो उसने फटाफट कुछ मंत्र का उच्चारण किया तो देखा कि एक जानवर का सा रूप हो गया पशु का. फिर दूसरे ने कहा कि मैंने ऐसी शिक्षा प्राप्त की है कि मैं इसमें फ्लैश यानी मांस और खून का संचार कर सकता हूं. तो उसने फिर कुछ मंत्र विद्या पढ़ी, मांस खून का उसमें संचार हुआ और देखा एक शेर का रूप वो हो गया था. बहुत खुश हो रहे थे कि जो जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, मंत्र विद्या सीखी है, उसका प्रैक्टिकल रूप हो रहा है और हम सफल हो रहे हैं। तो तीसरे ने कहा कि वाह बहुत अच्छा, मैंने ऐसी विद्या प्राप्त की है मंत्र विद्या कि मैं इसमें प्राणों का संचार कर सकता हूं। तो वो प्राण का संचार करने जा रहा था कि इतने में चौथा मित्र ने बोला, अरे मित्र आप क्या कर रहे हैं, आपने कभी सोचा कि आपने अगर प्राणों का संचार कर दिया तो फिर क्या हालत होगी। तो वो तो अपने नशे में थे तीनों, उन्होंने कहा अरे देखो इन दोनों ने तो अपनी मंत्र विद्या से जो इन्होंने सीखा उसको सिद्ध कर दिया, अब मेरा सिद्ध करना बाकी है, उसके बाद आप भी जो भी आपने सीखा हो वो आप बताना। तो चौथे ने बोला नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप सोचो आप क्या कर रहे हो, अगर ये शेर जीवंत हो गया तो हम सबका क्या हो। खैर आप अगर, लेकिन वो तो नहीं माना तीसरा मित्र, उसने कहा मैं तो अपनी विद्या को देखूंगा सिद्ध करके। वो करने लगा, इतनी देर में चौथे ने कहा कि भाई अच्छा आप अगर चाहते ही हो करना तो करो, मैं दूर जाता हूँ। वो दूर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। फिर तीसरे ने भी मंत्र विद्या वगैरह पढ़ी, उसमें प्राणों का संचार हुआ और वो शेर जीवंत हो उठा। समझ सकते हैं उसके बाद क्या हुआ होगा। हाँ भाई शेर था और वो तीनों को उसने मार दिया। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। चौथा तो बच गया क्योंकि वो तो दूर जाके पेड़ पर चढ़ गया था। हाँ तो इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। हाँ करने से पहले सोचना चाहिए, ओके दैट इज फाइन। और सहयोग, विद्या का उपयोग नहीं करना है, नहीं इसको अगर प्रॉपर रीति से कि सही स्थान पर सही रीति से विद्या का सही उपयोग होना चाहिए। आजकल जैसे मैनेजमेंट में बोल देते हैं भाई राइट पर्सन एट द राइट जॉब, या ये कहा जाता है कि स्क्वायर पैग इन द सर्कुलर होल। अगर एक होल है हा? उसमें आप एक पैग या कील या वो डालना चाहते हैं तो जैसा होल होगा वैसा ही पैग चाहिए, जैसे रिंच होता है। आप रिंच से जैसा स्क्रू होगा, जैसा वो इंस्ट्रूमेंट होगा वैसा ही रिंच होना चाहिए, तब उसे टाइट कर सकते हैं या खोल सकते हैं। यानी कि राइट इंस्ट्रूमेंट एट द राइट प्लेस। इसी प्रकार से ये जो थिंकिंग की बात है, पॉजिटिव थिंकिंग, एक तो कर्म करने से पहले अच्छी तरह सोचना, सोच कर्म करने के बाद में ना सोचना पड़े ये मैंने क्यों किया, पछताना ना पड़े। और दूसरी बात कि यह जो थिंकिंग है, थिंकिंग शुड बी इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में थिंकिंग हो, और यही राइट थिंकिंग है। और राइट थिंकिंग का जब बहुत जीवन में अभ्यास हो जाता है, यही थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में हमारे और दूसरे जीवन, दूसरे लोगों के जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। तो ये है क्या थिंकिंग, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये तो आज आप आज सुबह से ही सुन रहे होंगे। आज सुबह आपको राजयोग शिविर का जो लेसन कराया गया उसमें मुख्य बात क्या बताई गई, आप कौन हैं, आप कौन हैं, है? आत्मा। अभी तक तो आप समझ रहे होंगे जो ट्रेड के, भाई मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, प्रोफेसर हूँ, खेती करता हूँ, ये जो भी काम करते हैं, बंबई से आए हैं, गुलबर्गा से आए हैं, आदि आदि। लेकिन ये आज आपको पता चला कि आप कौन हैं, आत्मा। ये शरीर ही नहीं है जो शरीर को अभी तक समझते आए, बल्कि आप आत्मा है। और उसी को ही आगे बढ़ाते हुए अगर हम ये सोचते हैं कि ये शरीर हमारा है और आत्मा क्या है, आत्मा इस शरीर की राजा है, यहां पर ये आत्मा का निवास स्थान है और आत्मा इस शरीर का संचालन यहां करती है। और आज आपको क्या बताया गया, आत्मा के कितने अंग होते हैं, कितनी फैकल्टीज हैं, 7। सात्व आत्मा के वो गुण हैं, हाँ, और आत्मा के कितने वो हैं? तीन। क्या क्या हैं तीन? मन, बुद्धि, संस्कार। वेरी गुड, आप तो एक ही दिन में बहुत एक्सपर्ट हो गए, हाँ, बहुत अच्छा है अभी तो। तो ये जो है मन, मन फेथफुल हो, जैसा हम चाहें आत्मा वैसा मन हमारे कहने पर चले, तब तो ठीक है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत। मन के ऊपर ही सब कुछ है, मन खुश है सब कुछ खुश है, और मन अगर दुखी है, अशांत है, तो जीवन में सब साधन सुविधाएं होते हुए भी जीवन में हम खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। तो मन जो है ये एक फेथफुल माइंड हो, और साथ में बुद्धि जो है ना, बुद्धि भी कैसी हो? सरेंडर्ड इंटेलेक्ट, यानी कि बुद्धि राइट रीति से, सही रीति से बुद्धि सोचे। जैसे राजा होता है ना, तो राजा के मंत्री, सेनापति, सैनिक सब होते हैं, और तब राज कारोबार ठीक चल सकता है जब राजा के कहने पर ही मंत्री, सेनापति, सैनिक वो सब चले। और अगर बगावत हो जाती है, राजा के कहने पर नहीं चलते, तो नहीं हो सकता। तो मन जो है वो मंत्री है, बुद्धि क्या है? सेनापति है, और जो संस्कार हैं वो संस्कार हैं सैनिक। तो ये संस्कार अलग अलग जो हैं, ये संस्कार अगर हमारे वश में, सैनिक हमेशा अपने कमांडर के वश में रहता है। अगर सैनिक वश में ना हो, कमांडर कोई और ऑर्डर दे और सैनिक दूसरा काम करे, तो क्या होगा? तब तो सारी अव्यवस्था हो जाएगी। तो आज वास्तव में यही हो गया है, आत्मा राजा है लेकिन मन जो है ना वो हमारे कहने पर नहीं चलता, बुद्धि हमारे कहने पर नहीं चलती, हमारे संस्कार बार बार हमें, हम कई काम नहीं करना चाहते फिर भी पुराने संस्कार हमसे वो कार्य करा लेते हैं। इस कारण से ये जो अपना बात है कि अपने संस्कारों को हमें किस प्रकार से पॉजिटिव रखना है, ये देखना है, और वो तब होगा जब संकल्प पॉजिटिव होंगे, विचारधारा। तो आज कैसे हमारी विचारधारा भी पॉजिटिव हो, थिंकिंग पॉजिटिव हो, तो ये बेसिक चीज है थिंकिंग। आत्मा राजा है और मन जो है उसकी थिंकिंग फैकल्टी है, सोचने की है। इसीलिए कहा गया है कि वार इज फर्स्ट फॉट इन माइंड एंड देन ऑन द बैटल फ्रंट। युद्ध भी पहले मन में लड़ा जाता है तब युद्ध स्थल पर। आप देखो, क्रोध आया तो क्रोध में आपने मानो किसी को मारा, तो वो मारने की प्रक्रिया तुरंत नहीं होती है, पहले मन में क्रोध आएगा। जब मन में बहुत तेज क्रोध आएगा तो वाणी में भी क्रोध आ जाएगा, बहुत वाणी कंट्रोल में नहीं रहेगी, और वाणी में भी क्रोध आ जाएगा, उसके बाद फिर कर्मों में आता है। तो क्रोध की बात नहीं, कोई भी कार्य हो इस ऑर्डर में चलता है। इसीलिए ये जो कहा गया है ना कि मन जो है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन को नियंत्रण में करना ये एक जीवन की बहुत बड़ी कला है, और इसके आधार पर ही हम पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। अब क्या है मन और बुद्धि, अब देखिएगा गौर से। अब हम लोग देखेंगे कि किस रीति से हम अपने मन को, बुद्धि को नियंत्रण में करके पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। अब ये व्यक्ति है ना, अब देखिए ये दो में पार्ट में डिवाइड है। तो मन, ये बताया गया है, ये मन है विचार करने का। तो विचार ऐसे होते हैं जिनमें कोने, जैसे कोई भी चीज कोने वाली होती है ना, मानो ये मेज है, आप तेजी में जा रहे हैं, कोना लग गया तो कोने से दुख होगा, और यही अगर स्मूथ हो जाते हैं विचार, ये योग के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा ये सब, तो यही मन के विचार सुखदायी हो जाते हैं। तो मन के विचारों को, ये जो कोना है ना, ये दुख देने वाले नेगेटिव थिंकिंग भी इसके अंदर है, इनको स्मूथ करना, सेल्फ एम्पावरमेंट और मेडिटेशन, योग के द्वारा, स्व सशक्तिकरण के द्वारा ऐसे मन के विचारों को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं, बुद्धि। अक्सर करके क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती, ये करें या ये करें, ऐसा करें या ऐसा ना करें, क्या करें। तो तुरंत तो योग के द्वारा और स्व सशक्तिकरण के द्वारा बुद्धि एकदम बैलेंस हो जाती है और तुरंत ही हम सही गलत का निर्णय एकदम कर सकते हैं राजयोग मेडिटेशन के द्वारा। तो ये सशक्तिकरण का मतलब क्या है, मन ठीक विचारधारा करे, बुद्धि ठीक समय पर सही निर्णय करे, और साथ ही साथ संस्कार जो है ना, उन्हें कहा जाता है रिकॉर्ड की तरह। पुराने जमाने में जो हमारे बुजुर्ग भाई बहन बैठे हैं, अभी तो सीडी प्लेयर हैं, इससे पहले टेप रिकॉर्डर वगैरह, उससे भी पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड, हिज मास्टर वॉइस वाले देखे होंगे शायद आप लोगों ने, रिकॉर्ड चलते थे, ऊपर साउंड बॉक्स सुई रख दो, वो घूमते थे और उससे आवाज निकलती थी। तो ये ही संस्कार की बात है कि, और कभी कभी जब रिकॉर्ड पुराना हो जाता था तो क्या होता था, सुई अटक जाती थी और बार बार वही आवाज निकलती थी, हम नहीं भी चाहें तो भी वही आवाज। तो योग के द्वारा ये जो इरेगुलर संस्कार है, रेगुलेटेड नहीं है, उनको हम स्मूथ बना सकते हैं और समय रूपी सुई के नीचे हमारा जीवन बड़ा ही सुव्यवस्थित रीति से चलता रह सकता है। इसीलिए ये जो जितनी चीजें बताई गई हैं आपको मन बुद्धि संस्कार की रेगुलेशन की, ये योग के द्वारा, स्व सशक्तिकरण के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, ये सारा हमारा जीवन बहुत यथार्थ चल सकता है। इसीलिए ये जो आत्मा है ना, आत्मा को अंग्रेजी में और भी क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं आत्मा को, सोल, एस ओ यू एल, यानी इसका भावार्थ क्या है, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, एस ओ यू एल, यानी आत्मा जो है बेसिकली प्रेम स्वरूप है। और इसीलिए प्रेम के लिए कहा है कि पोथी पर जगमुआ पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यानी जीवन में व्यवहार में अगर ये प्रेम आता जाता है तो क्या है, वो ही पंडित है। तो इस रीति से जीवन व्यवहार हमारा अगर सुव्यवस्थित रीति से चलता है तो ये आत्मा को बहुत आगे, जो आत्मा के सात गुण आज आपने सीखे हैं ना, कौन से सात गुण आत्मा के सीखे आज, कौन कौन से बोलिए, प्रेम, शांति, ज्ञान, पवित्रता, सुख, आनंद, और एक रह गया शक्ति, शक्ति, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान और शक्ति स्वरूप, ये आत्मा के बेसिक गुण हैं। और इस कारण से जब आत्मा इन गुणों में होती है ना तो बहुत सुख का अनुभव करती है, लेकिन इनके विपरीत जब शांति की बजाय अशांति, सुख की बजाय दुख और पवित्रता की बजाय अपवित्रता इन सब के अंदर हो जाती है तो क्या होता है, आज का मनुष्य जैसे ना ये मकड़ी का जाला देख रहे हैं ना, तो मकड़ी के जाले में हम खुद ही संसार में आते हैं और अपने बनाए जाले में खुद ही फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं देखिएगा, इसके अंदर ना ये मकड़ी का जाला है और आज का मनुष्य है इस मकड़ी के जाले में फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है देखो, बेचारा नाच रहा है, नाचता है विकारों के वशीभूत होके, और कैसे विकारों के वशीभूत होके नाच रहा है, ये देखो, ये जैसे कि सूक्ष्म ना ये मन की कमजोरियां है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि आदि मुख्य ये पांच कहे जाते हैं, लेकिन ये मनुष्य के अंदर व्याप्त हैं और इस कारण से आज का मनुष्य मकड़ी के जाले में जैसे फंसा हुआ है और फंसे होने के कारण वो उससे निकल नहीं पा रहा है। क्या करे ऐसे में, अगर वो इससे निकलना चाहता है तो जो आपको कराया जा रहा है, क्या राजयोग शिविर कर रहे हैं, मोबाइल जब आपका डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। कैसे चार्ज करते हैं? मेन पावर हाउस में प्लग में लगा दिया, पावर चार्ज हो गया। ऐसे ही आत्मा भी ना, ये इस सृष्टि नाटक में खेल खेलते खेलते बहुत कमजोर हो गई है, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो उसे चार्ज करने के लिए मेन पावर हाउस से लगाते हैं। अभी देखिए ये जो है ना, ये मेन पावर हाउस, ये है परमपिता परमात्मा का प्रतीक, मेन पावर हाउस। जब इससे बुद्धि का योग लग जाता है, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है, तो फिर क्या होता है, जैसे मकड़ी के जाले से व्यक्ति ये बाहर आ जाता है, और ये जो विकार है ना, ये विकारों से जैसे बच जाता है, ये विकार आत्मा से बाहर चले जाते हैं और व्यक्ति शक्तिशाली होने लगते हैं। मोबाइल भी जब चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा है ना। तो इस रीति से ये चार्ज हो जाते हैं, आत्मा शक्तिशाली होने लगती है। तो कोई भी चीज की अगर शक्ति आती है तो क्या होता है, मोबाइल चार्ज हो गया, फिर आप जहां चाहें वहां फोन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, जो भी बात है, जो काम रुके हुए हैं वो कर सकते हैं। बस ये ही आत्मा रूपी बैटरी जब एक बार चार्ज हो जाती है तो सारा जीवन सुव्यवस्थित होने लगता है। इसलिए ये जब ऐसा हो तो इसके लिए फिर और क्या करना है साथ में, तब जीवन हमारा सुव्यवस्थित हो जाता है, लाइफ। और ये जीवन के देखिए परिभाषा बड़ी अच्छी बताई गई है, ये चार अक्षर का शब्द LIFE, लाइफ। जीवन की वैसे तो बहुत परिभाषाएं की हैं, क्या क्या, एक यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना हमारी, तो यहाँ पर एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा जीवन की एजुकेशन के रूप में परिभाषा करी, शिक्षा के रूप में, कि जिंदगी है एक सेंटेंस, जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जवानी - बुढ़ापा - मौत को फुल स्टॉप समझो। - और फुल स्टॉप होता है ना सेंटेंस के अंदर, तो जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जवानी - तनी हुई, बुढ़ापा - की तरह कमर हो जाती है ना, और मौत को फुल स्टॉप समझो। ये हो गई एक जीवन की परिभाषा। किसी ने जीवन की परिभाषा कर दी कि लाइफ इज ए जर्नी परफॉर्म इट, जीवन एक यात्रा है चलते चलो। जिसने जीवन को जिस रीति से देखा, लाइफ इज ए गार्डन, लाइफ इज ए सॉन्ग, जीवन एक गाना है गाते चलो, इस रीति से अलग अलग सबने अपनी अपनी परिभाषाएं की, लेकिन कोई भी परिभाषा संपूर्ण नहीं है। एक परिभाषा ये लगती है जैसे संपूर्ण जैसी, क्या लगती है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर बताया गया है लुक इंटरनली, LIFE, लुक इंटरनली, ये जीवन का एक पहलू है, और दूसरा जीवन का पहलू है फॉरवर्ड एक्सटर्नली, FE, ये देखते हैं FE। तो ये एक है जीवन का आंतरिक पक्ष, एक है जीवन का बाह्य पक्ष, एक है भौतिक, एक है आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक ये भौतिक। तो जीवन में दोनों चीज जरूरत है भाई, पैसे भी जरूरत है, घर गृहस्थी, मकान, मोटर, फ्रिज आदि आदि, ये सब आवश्यक है, लेकिन साथ साथ ये पहलू भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कई बार इस प्रोसेस में जीवन में चलते चलते ना टेंशन, स्ट्रेस, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारे ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जब आत्मा को शक्ति की जरूरत होती है। इसीलिए ये जीवन के दो, बड़ा अच्छा कहा है किसी ने, ये दो टांगों की तरह है, अगर ये दोनों बैलेंस नहीं होता है तो क्या होता है। मुझे कई बार विदेश जाने का मौका मिला, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, खास करके USA और यूरोप के कई कंट्रीज, तो उनमें देखा कि जीवन की सब सुख सुविधाएं हैं, धन दौलत है, खाना पीना, एवरीथिंग जो जीवन में आवश्यकता है, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं है। रात को सोते समय नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं, फिर भी नींद नहीं आती। सब कुछ होते हुए भी संबंधों में मधुरता नहीं है। पति पत्नी बाल बच्चे सब रहते हैं, लेकिन बहुत रेयरली कभी हंसते बहलते हैं और नहीं तो मिल ही नहीं पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये जीवन के दोनों पहलू जो है, एक भौतिक पक्ष, तो ये भौतिक पक्ष में वो 90% 95% जीवन होता है, और सप्ताह में एक दिन घंटे आधे घंटे के लिए चर्च में चले गए, और उससे कोई ये आत्मिक पक्ष स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो इसने बड़ा अच्छा कहा है किसी ने, अगर दोनों बैलेंस नहीं होंगे तो जीवन में मायूसी आ जाएगी। हो के मायूस नयो शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव से चलोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही दोनों पांव से आगे बढ़ते रहिए। ये दोनों पांव क्या है? ये दोनों पांव, एक है भौतिकवाद, एक है अध्यात्मवाद। तो इसीलिए जीवन में ये दोनों बातों का बैलेंस होना ये बहुत जरूरी है, भौतिक और आध्यात्मिक। तो जीवन में कभी मायूसी और उदासी नहीं आएगी। और साथ में इस वर्ड में क्या देख रहे हैं, इसमें और कुछ आपको खासियत दिखाई देती है? LIFE इस शब्द में इसमें देखो, ये बीच के दो वर्ड मिलके क्या होते हैं? इफ, यदि, काश। इफ इफ आई हैव नॉट डन दिस थिंग, दिस वुड नॉट हैव हैपेंड। इफ आई हैव टेकन दीज स्टेप्स, रिजल्ट्स वुड हैव बीन डिफरेंट। यानी यदि मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता। हम आधा जीवन हमारा ना भूतकाल में गुजर जाता है। ये चार में से दो शब्द, यानी आधा जीवन हमारा भूतकाल में, बस पुरानी बातों को हम भूल नहीं पाते, वो बात बार बार याद करते रहते हैं, और जीवन में इसी कारण से हमारी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो पाती। पुरानी बात, किसी ने कुछ कह दिया, वो चुपती रहेगी बात, क्यों कहा, कैसे कहा, मैं भी बदला लूं, ये करूं, वो करूं, पुरानी बातों। इसीलिए बड़ा अच्छा कबीरदास जी ने कहा है, वो ये दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। पुराने जमाने में चक्की होती थी ना, घर में चक्की होती थी, घरघंटी, तो हाथ से चलाते थे, अनाज डालते थे, तो वो अनाज जो है, ये जैसे दो चक्की के पार्ट हैं और बीच में अनाज डालते थे और इसे चलाया करते थे खूंटे से, तो बाकी अनाज तो जो होता था सब पिसके निकल जाता था, लेकिन जो बीच में थोड़ा अनाज रहता था वो साबुत रह जाता। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, तो दो पाटन, ये भूतकाल या भविष्यकाल। या तो हमें भूतकाल की चिंता समाप्ति, भूतकाल का चिंतन करते रहेंगे, या भविष्य की चिंता, क्या होगा कल, अब तो मैं रिटायर होने वाला हूं और बच्ची की शादी है, मकान बनाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, बस भविष्य की चिंता या भूतकाल का चिंतन, क्या करें फिर? भूतकाल और भविष्यकाल और तीसरा काल कौन सा होता है? वर्तमान काल। बस तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका न कोई। बीच में अनाज है, पिसता नहीं है, साबुत रह जाता है, तो वो है वर्तमान, प्रेजेंट। प्रेजेंट जैसे पास्ट एंड फ्यूचर, ये दो पार्ट हो गए, और बीच है वो है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट माने गिफ्ट, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी में जाते हैं तो प्रेजेंट ले जाते हैं ना, तो ये प्रेजेंट जो है ये है हमारा वर्तमान। तो ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है ये है प्रेजेंट गिफ्ट, इसको अगर हम वर्तमान में जीना जानते हैं तो हमारा जीवन सदाकाल के लिए खुशनुमा, सुखदायी हो जाता है। तो इसीलिए अभी हमें ये लाइफ के इस पहलू को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और लाइफ के अंदर जैसे आपको बताया, ह्यूमन माइंड, संसार में बहुत सारे अजूबे हैं, बहुत आश्चर्य हैं, लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क जैसा इतना बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है। कंप्यूटर भी होता है, कितनी मेमोरी हो, लेकिन हमारे जीवन में देखो, जब से पैदा होते हैं 60 70 80 90 जितने साल तक जीते हैं, पूरी मेमोरी भी छपी रहती है। बस कैसा ये कंप्यूटर है, तो ब्रेन, तो ये ह्यूमन माइंड बहुत बड़ा आश्चर्य है। और इस संसार को ये भी कहा जाता है, संसार तो भवसागर है, इससे पार होना है। और मन, मन को कहा जाता है क्या करे, मन तो घोड़े की तरह है, बहुत चंचल है, हम चाहते नहीं लेकिन मन हमारा भाग जाता है। हम कहीं मन को लगाना चाहें वहां नहीं लगता, मन भाग जाता है अलग अलग। तो क्या करें ऐसे, जब ऐसे हो जाती है विचारधारा है ना, तो फिर मन को बताना पड़ता है। और मन का तो आपने समझ लिया, मन जो है ना एक थिंकिंग फैकल्टी, आई, सोचने की शक्ति का नाम विशेष करके ये मन है। और मन के अंदर क्या क्या मन करता है, आज आपको सुबह बताया, मन में क्या क्या होता है, क्या क्या काम है मन के है? एक तो काम है मन का सोचना, ओके, और क्या काम है मन का, मन का काम है फील, महसूस करना। कोई भी चीज होती है ना, महसूस मन को ही होती है। अच्छी बात सुनी खुश हो गए, कोई बुरी बात सुनी बस दुख हो गया, फील महसूस था। साथ ही साथ तीसरा इमेजिन करना, मन का काम है कल्पना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि कहां पर, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। आपने मानो रसगुल्ला खाया है, जानते मीठा होता है, अब दूसरा कोई जितना भी समझाने की कोशिश करे रसगुल्ला वही नहीं नमकीन होता है, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि अनुभव किया हुआ है। इसी प्रकार से इमेजिन, कोई भी चीज की कल्पना करना, ये भी मन का काम है। और चौथा एक काम मन का है, वो है आइडियाज, विचारों का निर्माण करना, विचार करना। तो ये मन के अलग अलग कार्य होते हैं, और इसीलिए मन के कार्यों को ये देखो। अब आपको आज बताया गया होगा विचार, हाँ, कई प्रकार के विचार आते हैं ना मन में, कौन से विचार आते हैं, कितने प्रकार के विचार आते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, वेरी गुड। और देखो वही जो आपने ना, जैसे एक पॉजिटिव थॉट्स, कौन से हैं पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स कौन से होते हैं, हाँ, मोटे तौर पे जो आत्मा के आपने सात गुण अभी गिनाए ना, उन गुणों से प्रभावित होके जो विचार होते हैं वो पॉजिटिव हैं। शांति के विचार, प्रेम के, आनंद के, शक्ति के, ज्ञान के, ये सारे विचार जो है ना ये पॉजिटिव हैं। और इसके विपरीत नेगेटिव विचार कौन से हैं, इसके विपरीत, शांति की बजाय अशांति के, सुख के बजाय दुख के, सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान शक्ति, इनके विपरीत जो विचार हैं, घृणा के, ईर्ष्या के, द्वेष के, अहंकार के, ये सारे विचार नेगेटिव विचार हैं। तो ये तो विचार मुख्य होते हैं, साथ साथ और क्या होता है, तीसरे विचार है वेस्ट थॉट्स। कौन से वेस्ट थॉट, व्यर्थ विचार, वो है व्यर्थ विचार जो जब हम पास्ट में, मैंने आपको बताया ना, खाली बैठे हैं बस पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, उनसे प्रभावित हो रहे हैं, ये क्यों हुआ कैसे हुआ, वेस्ट समय, उसको कर तो कुछ सकते नहीं, पास्ट हो गया, लेकिन फिर भी पास्ट के विचार करना, उनसे निकल नहीं पाते। और इसी प्रकार से एक है आवश्यक विचार, जो घर गृहस्थी के आवश्यक विचार होते हैं, भाई नौकरी धंधा करना है, घर में खाना पकाना है, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है, ऑफिस के जो भी काम हैं, व्यवसाय के जो काम हैं, जो आवश्यक काम है वो ये विचार। तो ये अलग अलग विचार। तो अभी आप जब भी जो विचार करो और कर्म करो, कर्म करने से पहले विचार तो आता ही है, तो आप ये देखो, चेक करो अपने विचार को कि वो नेगेटिव थॉट के वशीभूत है या पॉजिटिव थॉट के है या व्यर्थ विचार है, कैसा है। और जीवन में जो पॉजिटिव थॉट, जो दूसरे को सुख देने के, शांति के, प्रेम के, ज्ञान के, शक्ति के विचार होंगे ना, वो कार्य करेंगे, तो उससे आपको भी खुशी की, शांति की प्राप्ति होगी और दूसरे को भी होगी। इसीलिए ऐसे विचार को प्राथमिकता देना, वो जीवन का एक मुख्य कर्तव्य अपना रहे तो जीवन बहुत बहुत ही यथार्थ रीति से चलता रहे। अब पहचानेंगे कैसे कि एकदम पॉजिटिव विचार कौन है, निगेटिव कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? उसके लिए विचारों की जो स्पीड होती है ना, गति, उससे पहचान सकते हैं एकदम। अभी जब आप योग करते हैं यहां पर बहन जी लाल लाइट जला देते हैं, आज भी करा होगा ना, थोड़ा उन्होंने धीरे धीरे बोला होगा मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, परमात्मा। कल दादी जी भी वो करा रहे थे ना, भाई परमात्मा शांति का सागर है, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूं, धीरे धीरे बोल रहे थे, आपके भी विचार बहुत धीरे धीरे। तो नॉर्मल केस में जब जो विचार चलते हैं और वो विचार जब बहुत तेज हो जाते हैं, नेगेटिव विचार जब होते हैं ना, बहुत तेज वेस्ट विचार बहुत फास्ट चलते हैं, जो साधारण विचार होंगे वो उसकी तुलना में धीरे चलेंगे, और जो एकदम पॉजिटिव थॉट्स होंगे ना वो बहुत बहुत धीमी गति से। जब आपको ये कमेंट्री योग की दी जाती है तो कितने कम विचार हो जाते हैं। और अभी आप यहां बैठे हैं, सडनली कोई न्यूज आया, अरे भाई आपका बच्चा रोज स्कूल से शाम को 4 बजे आ जाता है, आज अभी तक नहीं आया, 5, 6, 7, 8 बज गए, अभी तक नहीं आया। बस आपके मन में विचार तेज चलने, क्या हुआ, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया रोड पर, कहीं कोई आतंकवादी तो उठा के नहीं ले गया, क्या हुआ, तो बस विचारों की गति बड़ी तेज हो जाएगी, क्या करें, कैसे करें, हॉस्पिटल फोन करेंगे, इधर फोन करेंगे, उधर जाएंगे, सब तरफ। तो विचारों की स्पीड जब बहुत तेज हो जाए, समझो वो विचार स्ट्रेस पैदा करने वाले हैं, और वो विचारों की गति को कम करने की आवश्यकता है। तो पॉजिटिव विचार जितना होगा उतना कम और धीमी गति से चलेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव विचार होगा उतना तेज गति से। क्रोध आता है एकदम, कितने विचार आते हैं मन में, ये कर दे, इसका ये कर दे, चिल्लाने लगते हैं, तेज बोलने लगते हैं, और सारा हर चीज बड़ी फास्ट गति से स्पीड हो जाती है। तो जितने भी विकारों के वशीभूत कार्य होते हैं, विचार होते हैं, बहुत तेज गति से, और जो शांत योग के प्रभाव में होते हैं वो उनकी गति धीरे होती है। इससे आप अपने को उससे पहचान सकते हैं कि कैसे हमारे विचार हैं। और इससे क्या होता है, निर्णय शक्ति हमारी बढ़ती जाती है, और पता चलता है कोई जीवन में ना कोई भी इवेंट अच्छा या बुरा उतना नहीं होता है, बल्कि जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं वो इवेंट अच्छा या बुरा बन जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहा जाता है ना, तो इस कारण से वो इवेंट है। और इसीलिए देखो, जो दिन में सूर्य की रोशनी होती है तो तारों की रोशनी नहीं होती है, तारे छिप जाते हैं, लेकिन जब रात होती है तब तारे चमकते हैं। इसका भाव क्या है? है कि जब हमारे सामने कोई परीक्षा आती है, कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो तब हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का आभास होता है। ओहो, मेरे अंदर ये भी शक्ति है, मैं ये भी कर सकती हूं, ये भी कर सकता हूं, और तब हमें पता चलता है। तो इसलिए ओनली इन नेगेटिव सिचुएशन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट पॉजिटिव क्वालिटीज। जब कोई विपरीत परिस्थिति, एग्जामिनेशन होता है, विद्यार्थी पढ़ाई की है नहीं की है, लेकिन जब परीक्षा होती है तब उसे पता चलता है कि मैंने कितना आत्मसात किया, कितना पढ़ा है, कितना धारण किया, कितना लिख सका। तो जीवन में अगर परीक्षाएं आती हैं, उन परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए, यही समझना चाहिए कि परीक्षा हमें और ऊंची और महान ले जाती है। और ये सब निर्भर करता है हमारे एटीट्यूड पर, हमारा दृष्टिकोण कैसा है वो इसमें बताया गया है। देखिए, ये मान लो मैं आपके घर आया, हाँ, आपने मुझे गर्मी में आया हूं, आपने मुझे पानी दिया, अब आधा गिलास पानी का भरा है, आधा खाली है, इसमें तो इतना नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं दो रीति से सोच सकता हूं, अगर मैं ये सोचूं अरे आधा खाली, इन्होंने मुझे बस आधा भरा दिया, आधा खाली है, खाली अगर मैं देखता रहूंगा तो मुझे दुख होगा, अशांत होंगे, और इसके विपरीत यदि मैं भरा हुआ पोर्शन देखता रहूंगा, ओह आधा पानी, चलो इससे मैं अपनी प्यास बुझाता हूं, तो क्या होगा, जीवन में सकारात्मकता आएगी, विचार सकारात्मक होंगे। बड़ा सिंपल चीज है। तो इसका भाव यह है कि जीवन में हम भी ना, हमारे पास क्या है उसको देख करके खुश हो, क्या नहीं है उसको देख देख के हम दुखी ना होते रहे। मेरे पास तो भाई स्कूटर है, मेरे पड़ोसी पे तो कार आ गई, उसको देख करके अपने स्कूटर का भी मैं मजा नहीं ले सकता, उसको देख करके ईर्ष्यावश और मैं दुखी हो रहा हूं। मेरा तो भाई दो रूम का फ्लैट है, उसका तो बंगला बन गया बड़ा, उसको देख देख के ईर्ष्यावश में दुखी होता रहूं। बस एम्प्टी पोर्शन, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अगर हम खाली पोर्शन अपना जीवन का देखते रहेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर क्या है उसको देखते रहेंगे तो जीवन में हमेशा। तो क्या चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं या ऐसा चाहते हैं? हर एक कोई चाहेगा कि भाई हम खुश रहे, सुखी रहे। मुझे एक प्रोफेसर साहब की वो आती है कि एक प्रोफेसर साहब लेक्चर कर रहे थे और लेक्चर करते करते उन्होंने बताया मेडिकल कॉलेज में कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है। तो प्रोफेसर साहब लेक्चर करते उन्होंने समझा के फिर क्या करा, दो गिलास लिए, एक गिलास में पानी लिया, एक में अल्कोहल लिया। अब एक कांच का गिलास था, उसमें पानी लिया प्रोफेसर साहब ने, और पानी में क्या करा, एक कीड़ा मेज से देखा चल रहा था, वो कीड़ा उठा के पानी में डाल दिया। तो कांच का गिलास था, सबने देखा, वो कीड़ा अंदर जाके तैरने लगा, तैरता रहा। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर साहब ने निकाला उसे, मेज पर रखा, वो कीड़ा स्वस्थ था, हेल एंड हेल्दी, फिर चलने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर साहब ने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उस कीड़े को उठा के अल्कोहल वाले गिलास में डाल दिया। कीड़ा वहां गया, वहां जाके थोड़ा झूमने लगा, अल्कोहल थी शराब, बड़े बड़े पी के झूम जाते हैं, ये तो बेचारा छोटा सा कीड़ा ही था, उसके पेट में भी एक दो बूंद चली गई होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद कीड़ा एकदम शांत, उसका हलन चलन बंद हो गया। प्रोफेसर साहब ने उसे हिलाया, देखा कोई लाइफ नहीं, कीड़ा मर गया था, और सिर्फ मरा ही नहीं, उसका शरीर धीरे 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 उसके अंदर घुलने लगा, इतना ज्यादा वो अल्कोहल का असर। तो प्रोफेसर साहब ने ये एक्सपेरिमेंट दिखा के कहा कि भाई इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट इज द मॉरल। तो एक स्टूडेंट ने कहा खड़े, सर इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, शराब पियेंगे, तो हमारे पेट के सब कीड़े वीड़े मर जाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे। हाँ, यही शिक्षा मिलती है। इसीलिए कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हमारा सोचने का ढर्रा होगा ना, वही हमें जीवन में दुखी या सुखी कर देगा। तो सोचना वो ही सारे जीवन का आधार है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति एक रीति से सोचेगा वो सुखी रहेगा, वही परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति दूसरी रीति से सोच के दुखी रहेगा। तो हमारे हाथ में है कि कैसे हम हर परिस्थिति को एनालाइज करें और अपने जीवन को खुशनुमा या दुखी बनाएं। तो इसीलिए जीवन में हमारा धर्रा क्या होना चाहिए वो सदैव अपने को सोच के चलना चाहिए, और साथ में क्या करना चाहिए, बस बोलना, कई बार कहते हैं ना, स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन। कई बार शांत रहना ना बड़ा सुख का कारण बन जाता है। यहां पर बैठे ना, मछली को अगर पकड़ने जाओ, कांटा फेंकते हैं तो मछली कब फंसती है कांटे में, कब फंसती है, जब मुंह खोलती है। जैसे ही मुंह खोलती है वो कांटे में फंस जाती है और मछली को पकड़ के ले जाते हैं। ऐसे ही कई बार हम लोग भी ना मुंह खोलते हैं, बोलते हैं, और बोलने के कारण ना समस्याओं को जन्म दे देते हैं। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज गोल्ड, क्लोज माउथ स्पीच इज सिल्वर। तो साइलेंस इज गोल्ड। इसीलिए कहते हैं भगवान भी जब ना वो बना रहे थे सृष्टि, तो सब पशु पक्षी जीव जंतु बना दिए भगवान जी ने, ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा मैं इनका लीडर बनाऊं, तो मनुष्य को बनाया। और भगवान जी ने सोचा क्या उसमें खूबियां भरूं कि घर का जो बड़ा मेंबर होता है वो सबको एकता के सूत्र में बांध के रखता है, प्रेम से नम्रता से व्यवहार करेगा, परिवार अच्छा चलेगा। तो भगवान जी ने बड़ा सोच समझ करके उसे बनाया, और जीभ बनाई ना, तो जीभ में हड्डी नहीं थी कि भाई जीभ में हड्डी नहीं होगा तो कड़क नहीं बोलेगा, मीठा बोलेगा, और सब मीठा बोलेगा तो सब लोग प्रेम से रहेंगे। तो उसको हड्डी नहीं दी जीभ में, तो मनुष्य ने कहा कोई बात नहीं भगवान जी, आप भले मुझे हड्डी नहीं दो, मैं बिना हड्डी के ही काम निकाल लूंगा। इसीलिए कहा जाता है टंग जवान में हड्डी नहीं, टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स। जवान में हड्डी नहीं होती है लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है। बस मुंह से कुछ भी बोला, लड़ाई झगड़ा करा दिया, बहुतों की हड्डियां टूट जाती है। तो इसीलिए भगवान ने तो ये सोच के दी थी। बड़ा अच्छा शायर ने कहा है कि कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। भगवान ने हड्डी नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि भगवान को सख्ती मंजूर नहीं थी। लेकिन मनुष्य ने कहा कोई बात नहीं, बिना इसके काम निकाल लेंगे। और अक्सर करके हम बोल देते हैं क्या करें, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, मुंह से शब्द निकल गए, माई टंग स्लिप्ड, मेरी जवान फिसल गई। क्यों फिसलती है जवान? घर में भी फिसलने का ज्यादा स्कोप कहां होता है? ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, कहां ज्यादा फिसलने का? बाथरूम गीली जगह होती है। अब बिचारी ये जवान जो है गीली जगह में या सूखी जगह में है, मुंह क्या है? तो ये फिसल जाती है अक्सर। क्या करें भाई, फिसल जाती है जवान। लेकिन एक्चुअली जवान नहीं फिसलती, वचन में तो कोई भी बात बाद में आती है, पहले मन, मन के अंदर। इसीलिए आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कहा है, पॉजिटिव स्पीकिंग, पॉजिटिव डूइंग नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर थिंकिंग पॉजिटिव है तो स्पीकिंग भी पॉजिटिव होगी, डूइंग भी पॉजिटिव होगी, बिहेवियर भी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। लेकिन थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक चिंतन होना चाहिए। मुझे याद आता है एक कहानी पढ़ी थी मैंने, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी तकरार हो रही थी किसी बात पर, वाइफ बोले जा रही थी, हस्बैंड सुन रहा था। वो जानता था अगर वो भी बोलेगा तो और बात बढ़ेगी, इसलिए वो शांत था। लेकिन वाइफ को और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था इनको, तो उसने बस बहुत, जब नहीं रहा गया तो उसने एक मोबाइल पास में पड़ा था, मोबाइल उठाया, और क्रोध में तो व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं करती है ठीक से, हस्बैंड की तरफ फेंक के मारा। उसने उसे कैच कर लिया, गिरने नहीं दिया, और कैच कर लिया तो सेफ रहा। फिर और उसका गुस्सा बहन का बढ़ गया, वाइफ का, कि क्या मैं ये बोले जा रही हूं, जवाब क्यों नहीं देते हो? उसने जवाब दिया ना, इनकमिंग फ्री। मोबाइल था ना, मोबाइल में क्या है, इनकमिंग तो फ्री होता है, तो इनकमिंग फ्री। बस इनकमिंग फ्री हुआ, उस बात को, सिचुएशन को डाइल्यूट हो गई, और फिर से वातावरण जो है हल्का हो गया। तो जीवन में भी ना, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और हमारा लक्ष्य ये होता है, आग में घी डालने का लक्ष्य ना हो, बल्कि किस प्रकार से हम परिस्थिति को, जो टेंस परिस्थिति है, उसको और हम हल्का कर सकें, तो जीवन में वही खुशहाली भर देता है, वही जीवन में सुख शांति शक्ति ले आता है। तो इसीलिए बोलने के ऊपर हमारा बहुत बहुत कुछ मदार है, इसके ऊपर पॉजिटिव स्पीकिंग। साथ साथ पवन होता है ना, जब पतंग उड़ाते हैं ना कभी कभी, तो पतंग कब ऊपर जाती है? कभी कभी पतंग ऊपर नहीं जाती, क्यों नहीं जाती है? हाँ, पवन नहीं होता है, हवा नहीं होती है, लेकिन जीवन भी हमारा एक पतंग की तरह है, ये लाइफ पतंग की तरह है। बहुत टॉर्नेडो तूफान होते हैं आजकल, अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा तूफान उधर अलबामा वगैरह कई जगह आया बता रहे हैं, बहुत 150-200 से ज्यादा लोग मर गए, और कितने तूफान ये प्राकृतिक आपदाएं आ रहे हैं। तो जब पवन बहुत ज्यादा तेज हो और तो पतंग जीवन रूपी पतंग और ऊपर जाती है, और ऊपर ऊंची और ऊंची जाती है। तो इसलिए क्या समझना चाहिए, ये लिखा है कि तूफान को क्या समझो, तोहफा समझो। तूफान समस्याएं आती हैं तो ये समझो कि भगवान मुझे और ऊंचा ले जाना चाहता है मेरे, क्योंकि समस्या आई, अब समस्या को तो रोक नहीं सकते, लेकिन समस्या को सही ढंग से सोच करके ना उसमें से भी क्या पॉजिटिव है वो निकाल सकते हैं। जो समस्या आई वो तो हमारे हाथ की बात नहीं है, वो तो आ गई। तो इस कारण से तूफान को तोहफा समझेंगे तो जीवन में सदा आगे की तरफ बढ़ते रह सकते हैं। और साथ में क्या है, देखो जीवन में ना हर एक के पास सब चीज तो हो नहीं सकती, तो वाइल एंजॉइंग स्मॉल प्लेजर ऑलवेज थिंक बिग थॉट, लक्ष्य जीवन का महान रखो। अब देखो ये आदमी है, चला तो रहा है साइकिल, और साइकिल चलाते चलाते मजा ले रहा है कार का, कि जीवन के जैसे कि मैं शेवरलेट चला रहा हूं, कार में उड़ रहा हूं, है ना। और ये तो थिंक, हमेशा थिंकिंग हमारी विचारधारा महान। यहां पर भी ना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य ही है, आपको बताया होगा कि मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति करना, और वो तभी, यानी थिंकिंग आपकी हाई हो, जितनी थिंकिंग आपकी हाई होगी ना उतना आपका कार्य व्यवहार और बोलचाल भी हाई होता जाएगा। अब्दुल कलाम जी यहां आए थे जब वो राष्ट्रपति थे, और उन्होंने यही बोला कि थिंक ऑलवेज हाई, ड्रीम, स्वप्न देखो, महानता के स्वप्न, लक्ष्य हमेशा महान रखो, ड्रीम ड्रीम। और बड़ा अच्छा ड्रीम का उन्होंने भावार्थ बताया, स्वप्न क्या है, स्वप्न ये नहीं कि जो हम आंख बंद करके रात को बिस्तर पर सो के देख रहे हैं कल्पना में, वो स्वप्न नहीं, स्वप्न वो है जो हम खुली आंखों से देखते हैं, और जो स्वप्न हमें सोने नहीं देता। स्वप्न माने टारगेट, लक्ष्य जीवन का, ऐसा टारगेट होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम के पीछे लग जाता है ना, फिर उसे नींद भी नहीं आएगी, कैसे ये हासिल करूं, कैसे ये, बस उसी के पीछे, तो उसको उन्होंने स्वप्न कहा है। तो ऐसे ही यहां पर भी ये लक्ष्य दिया जाता है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, जैसे ये श्री लक्ष्मी नारायण ये सब है, तो ऐसा देवता बनने के लिए हमारे जीवन का भी लक्ष्य ना महान हो। और जीवन के लक्ष्य को महान कैसे होगा, हम सभी जब से पैदा होते हैं ना, हम सबके अंदर दो शक्तियां विशेष हैं। कौन सी दो शक्ति, एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति, पावर टू रिमेम्बर, पावर टू फॉरगेट। लेकिन जीवन की विडंबना क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। मेरा आपका कुछ मन मुटाव हुआ है? उस बात को भूल जाना चाहिए, वो तो बहुत समय तक याद रहेगी, अच्छा इन्होंने ये करा, बस मैं भी कैसे इन्हें नीचा दिखाऊं, बदला लूं, और बस वो अपॉर्चुनिटीज खोजते रहेंगे। जो भूल जानी चाहिए वो तो याद रहेगी, और जो याद रखनी चाहिए, किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, एहसान किया है हमारे ऊपर, वो बातें व्यक्ति नॉर्मली भूल जाया करता है। तो इसीलिए जीवन के अंदर ना हमेशा ये दोनों शक्तियों को सही रीति से हमें प्रयोग करना है, कि किसी ने हम पे एहसान किए हैं कोई बात उसे भूले नहीं, और साथ साथ किसी की गलती को हम याद ना रखें। नहीं तो कहीं ये आता है किसी ने कोई गलती की, बस जब भी कोई परिस्थिति आएगी बार बार उसे याद दिलाएंगे, देखो तुमने ये किया, ऐसा किया। गलती सबसे होती है, लेकिन बार बार अगर वो याद दिलाएंगे तो संबंधों में कटुता आती जाएगी। इसीलिए बड़ा अच्छा कहा है किसी ने, क्षमा करना आना चाहिए। महान पुरुष जो होते हैं ना, उनमें विशेष गुण होता है क्षमा। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा ना, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। जो वीर होगा, महावीर, मदर टेरेसा, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जो भी प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा, इन सब जिन जो भी जिनके संपर्क में, बहुत महान, सबको क्षमा करना। क्षमा बहुत बड़ा गुण है। तो क्षमा करने का मतलब क्या, किसी की कमी कमजोरी ऐसी बात को आप दिल में न रखो। अगर दिल में रहती है बात, वो फिर कभी मुंह पर भी आ जाती है, कर्मों में भी आ जाती है। तो इसीलिए क्षमा करते हुए आगे बढ़ाते चलो। और इसके साथ साथ क्या देखो, टेक टाइम टू थिंक। आजकल हर एक कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, हाँ? लेकिन ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस रहो, प्राणायाम करो, आसन, एक्सरसाइज, घूमना, लेकिन कहा जाता है नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए। अब देखो ये टीवी में ना, वो प्राणायाम करना या शीर्षासन करना सिखा रहे हैं। अब ये भाई देख रहा है रिवॉल्विंग चेयर पर और यही शीर्षासन करने लगे तो क्या होगा, हाँ? बस तो इसीलिए अभी हर एक चीज को डोंट जस्ट रिएक्ट, टेक टाइम। देखो बाबा रामदेव जी भी ना बड़ा अच्छा जब एक्सरसाइज सिखाते हैं, कहते हैं अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो इसे नहीं करो, अगर कमर में दर्द है ऐसा नहीं करो, सामने नहीं घूमो, पीछे नहीं करो। तो नकल भी ब्लाइंडली नहीं कर देना चाहिए किसी भी बात की, किसी ने कहा ब्लाइंडली बिल्कुल अंधविश्वास होके कार्य करें, नहीं। उसमें भी बुद्धि को अप्लाई करके और फिर ऐसा करें। और ऐसी परिस्थिति में और क्या होता है, कई बार होता है ना, देखो हमें टेंस, हर एक के पास टेंशन तो आता ही है। कोई ऐसा है जो कहे मुझे कभी टेंशन हुआ ही नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। कोई ना कोई परिस्थितियां होती हैं, टेंशन होता है। छोटी सी एक इसमें कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, और अभी जैसे मैच होते हैं ना, वनडे मैच क्रिकेट का, तो एक क्रिकेट का वनडे मैच हो रहा था। उस व्यक्ति ने बस इंडिया पाकिस्तान ट्रेडिशनल राइवल, और बस उसने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ली, अपना बस मैच शुरू हुआ, टीवी में देख रहा था, मुंह में सिगरेट लगाई हुई, पैर वैर फैला के आराम से कि आज एंजॉय करते हैं। इतनी देर में उसकी मिसिज आई, उसने कहा बच्चे, छोटा बच्चा था कुछ महीने का, उसके मुंह में दूध की बोतल लगी हुई थी कि भाई मैं घर का काम कर लेती हूँ, भले मैच भी देखो और ये बच्चा को दूध भी ये पिलाते रहो। तो उसने कहा ठीक है, बच्चे को ले लिया, मुंह में बोतल लगी हुई और खुद मैच देख रहा, बहुत एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर में बच्चा सो गया, तो बच्चे को पास में बिस्तर पर ही लेटा दिया और बोतल निकाल के उससे अलग रख दी, और बस मैच भी देख रहा था। बड़ी एक्साइटिंग स्टेट में मैच पहुंच गया, सिगरेट भी निकाल के उसने रख दी और मैच देख रहे हैं, कोई भी जीत सकता है। और बस 48th ओवर चल रहा है, 50 ओवर का मैच, और बस एक जो टारगेट है उसको चेस कर रहे हैं दूसरी टीम, और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज हो गया है। इतनी देर में बच्चा रोने लगा, और जब बच्चा रोने लगा तो उसको सारा ध्यान तो उधर ही था, अब वो क्या करे कि बस थोड़ा वो करा, लेकिन बच्चा तो बड़ा तेजी तेजी से रोने लगा। तो इमीडिएटली भाई बच्चे को उसने उठाया, और बस क्योंकि ध्यान तो वहां लगा हुआ है पूरा का पूरा, तो उसने जल्दी जल्दी में बॉटल अपने मुंह में लगा ली और सिगरेट बच्चे के मुंह में जैसे लगा दिया, देखो है ना। टेंशन में, स्ट्रेस में हमेशा काम उल्टा ही होता है, और इसीलिए उसका तो टेंशन हुआ, और दूसरों के लिए, जैसे अभी आप सब ये देख के हंस रहे हो ना, उसका तो बेचारे का टेंशन है, और दूसरों के लिए साइड सीन हो जाता है, एंजॉय करते हैं, हंसते हैं। अभी आप भी साइड सीन करने जाओगे ना एक दो दिन के बाद, यहाँ सब देखने, तो साइड सीन में तो सब, तब तो ये पढ़ाई लिखाई होगी नहीं, उस दिन तो सारा दिन घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। तो इसका तो टेंशन है और दूसरों के लिए साइड सीन हो गया खुशी, हाँ। तो कभी भी स्ट्रेस में और टेंशन में ना कोई ऐसा मेजर डिसीजन लाइफ का नहीं लेना कि एकदम टेंशन हो जाए और कोई डिसीजन ले लिया, नहीं। स्ट्रेस में टेंशन में हमेशा व्यक्ति कई बार गलत डिसीजन ले लिया करता है। इसीलिए ये थिंकिंग पॉजिटिव अगर होगी ना तो ऐसी परिस्थिति से आप हमेशा बचे रहेंगे। अब क्या है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स, लेकिन अगर हमने, आप यहां पर खास आए हो ना, तो यहां आपको बताया है ऐसे उड़ना सीखो। हाँ, दो पंख आपको यहां मिल रहे हैं। कौन से दो पंख मिल रहे हैं आपको ये? हाँ हाँ, बोलिए, ठीक बोला। एक ज्ञान का पंख, एक योग का। ये ज्ञान और योग के पंख, चिड़िया पक्षी उड़ते हैं ना, तो ये ज्ञान और योग के पंख से आप खुशी, उमंग, उल्लास, और जितना बुद्धि से आप उड़ते रहेंगे उतना आप, जितनी नीचे हर्डल्स बहुत आएंगे, ये नीचे हर्डल्स हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, नाले हैं, नीचे चलेंगे सब जगह रुकावट आएगी, लेकिन अगर बुद्धि से आप ऊपर उड़ते रहेंगे ना तो फिर कोई भी रुकावट नहीं आएगी। फ्लाई, ऊपर उड़ते रहेंगे और इस प्रकार से समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को जीवन में बड़ी सहज रीति से पार कर लेंगे। और जितना जितना समस्याएं पार होती जाएंगी, वो उसके लिए ये योग, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि योग के तो आपके लेक्चर चल ही रहे हैं, और इसमें अलग अलग ये है कि प्रतिदिन अपने माइंड को ना सुबह उठ करके कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स दो, ट्रैफिक कंट्रोल अपने सीखिए उस माइंड के द्वारा, हर एक के साथ कुछ पॉजिटिव शेयर करिए, कुछ ऐसा अच्छा पॉजिटिव वर्क डेली का, ये कुछ चीजें हैं जो आपको सारी अष्ट शक्तियों में और उन सब में ये बताई जाएंगी। और ये राजयोग मेडिटेशन आप करेंगे ना तो ये जैसे चार्जिंग ऑफ द सोल बैटरी है, और इससे आपको पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत बहुत मदद मिलेगी। निगेटिव थिंकिंग जैसे कि जलती जाएगी, खत्म होती जाएगी, और ये पॉजिटिव थिंकिंग होती जाएगी। अब हम करीब अंत के समय है, रात को भी, दिन में सारे दिन काम करके आदमी रात को सोने जाता है ना, तो रात को सोते समय क्या करिए, गौर से देखिएगा, एम्प्टी योर माइंड। हाँ, ऐसे अपने खोपड़ी का ढक्कन खोल सकते हैं, यानी कि दिन भर के जो भी आपके व्यर्थ विचार है, वेस्ट थॉट्स है, इरिटेशन वाले थॉट्स हैं, फ्रस्ट्रेशन, निराशा की जो भी निगेटिव बातें हैं दिन भर की, वो सारी योग के द्वारा आप डस्टबिन में जैसे डाल दो। बुद्धि से ना थोड़ी देर योग करेंगे, सारी निगेटिव बातें निकल जाएंगी और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी पॉजिटिव, और वो आपको, उससे क्या होगा, आपकी फैकल्टी जो है ना, जो थिंकिंग फैकल्टी है, वो भी रात को कार्य करती रहेगी। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में वो वर्क करता रहे, क्योंकि निगेटिव आपने निकाल दिया। आप बहुत गर्मी में आ रहे हैं, अब बहुत गर्मी में आए एसी रूम में, आ गए एयर कंडीशन रूम में, वहां आपको बड़ा ठंडा और अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण अलग कर दिया आपने, आइसोलेट कर दिया, इसलिए आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही योग के द्वारा आपने नेगेटिव थॉट्स को अलग कर दिया और पॉजिटिव थॉट्स के साथ सो गए, तो आपको बहुत कंफर्टेबल, और ये तभी होगा जब रोज रात को नींद जो है ना आप करेंगे। और आप अब यहां पर तो आपके चेहरे बड़े अच्छे खुशनुमा नजर आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसी स्थिति रहे। हो सकता है कि कभी आपको ना जब लौटे तो कभी कोई निराशा की बातें, कोई ऐसा आपका मूड ऐसा हो जाए, ऑफ हो जाए, तो क्या करेंगे, उस मूड को फिर से ऑफ मूड को और अच्छा खुशनुमा मूड में लाने के लिए आप यहां से जब जाए ना, तो क्या करिए कि कुछ ऑडियो कैसेट, कुछ वीडियो कैसेट ले जाइए, कुछ लिटरेचर ले जाइए, ये सब चीजें अपने साथ जरूर ले जाइएगा, सीडी, डीवीडी, कोई साहित्य, कोई अच्छे अच्छे स्लोगन घर में लगा दीजिएगा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ऐसा स्लोगन है पॉजिटिव थिंकिंग के। उससे क्या होगा कि ये सीडी वगैरह और ये आप सुनेंगे, और कभी मूड अगर ऐसा होगा फिर से आपका मूड एकदम ठीक हो जाएगा, खुश हो जाएंगे। और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, हम तो कई बार क्या करते हैं, बस ये सब लगा दिया, आप अगर कोई तैयार हो रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, घर में माता है, खाना पका रहे हैं, कोई भी घर का काम है, अगर सीडी लगा दी, डीवीडी लगा दी, बस सुनते भी जा रहे हैं और वो कार्य भी बड़े सुचारू रूप से चलेगा, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना और पूरा दिन भर आपका पॉजिटिव में निकल जाएगा। तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के निगेटिविटी को अपने अंदर धारण ना करिए, न्यूज़पेपर एकदम न देखिए सुबह ही सुबह, पहले थोड़ा सा ये जो चीज ले जाएंगे पॉजिटिव, ये सुन करके तब दिन अपना शुरू करेंगे योग करके, वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये अंत में ये आपको सेकेंड लाइफ, आप जाने से पहले ना अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपने अंदर झांक करके देखिए कि ऐसी क्या बात है जो आपको सुख शांति आनंद उसमें रहने नहीं देती है। तो आप देखेंगे कोई ना कोई वीकनेस, किसी के अंदर ईर्ष्या का संस्कार है, किसी के अंदर अहंकार, किसी के अंदर क्रोध, किसी का टेम्परामेंट लूज है, कोई घृणा की बात है। अपने अंदर शांति से सोचिए, फिर क्या करिए, एक छोटा कागज लेकर के ना उसमें आप लिख गए, हे प्रभु आज मैं अपनी इस कमजोरी का दान यहां पर आपको दे करके जा रहा, सच्चे दिल से भगवान के घर में आप आए हैं, यहां पर उस वीकनेस का दान करिए, बस नाम भी नहीं लिखिए, चाहे जगह भी नहीं लिखिए, कुछ नहीं, लेकिन जितना सच्चे दिल से, हमारे पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं, चेन स्मोकर थे, 20-20 डिब्बी सिगरेट की रोज पीते थे, एक सिगरेट से ही दूसरी सिगरेट जलाते थे, ऐसे ऐसे कितने सारे लोग आए, कई बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन यहां आके एक बार सच्चे दिल से प्रयास करा, आज तक उनके लेटर की, भाई जब से हमारी छुट्टी 12 साल 13 साल हो गए, अभी तक हमने कभी सिगरेट नहीं पी, क्यों, क्योंकि विल पावर इतनी जनरेट हो जाती है जब आप लिख करके कोई चीज करते हैं, वो आपकी विल पावर को एनहेंस कर देती है, इच्छा शक्ति को। तो इसीलिए आप इसमें आप देखिए, आपका कोई ना कोई वीक लिंक है, ये चेन है लेकिन ये आपके वीक लिंक है, इस कारण से कोई भी चेन है अगर एक कड़ी टूटी है इसका मतलब पूरी चेन ही बेकार है वो। तो इसीलिए आप इस कड़ी को स्ट्रांग करने की कोशिश करिए, जिससे आपके अंदर के जो खजाने सुख शांति आनंद पवित्रता जो आपने गाए हैं वो हो जाए। और ये आज का अंतिम स्लाइड है, लास्ट, कि आप ये जो पॉजिटिव थिंकिंग का प्रतीक है, ये कौन है, गणपति बापा मौर्या बोलते हैं ना, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग का, क्योंकि जब कहा गया भाई पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आओ, तो कार्तिक तो अपने वाहन पर चला गया और गणेश जी ने क्या किया, बस माता पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से कम समय में कम एनर्जी में ही उन्होंने उस रेस को विन कर लिया। तो राइट टाइम पर राइट, तो इसीलिए जो ये इसके अंदर बताए गए हैं कि बड़ा सिर जो होता है वो बड़े विचारों का प्रतीक है, हमेशा यहां से जाइए तो पॉजिटिव सोचिए, बड़े विचार। दूसरा, बड़े कान इस बात का प्रतीक है, कान को खुला रखिए, यानी कि कहीं से भी ना कोई भी नए आइडियाज नए विचार मिलते हैं उसको सुनिए और धारण करिए। तीसरी बात कि नैरो आई, छोटी आंख कर्म योग का प्रतीक है, क्योंकि कर्म करेंगे आंख बंद करके तो काम कर नहीं सकते, तो आंख खोल के काम करना है, लेकिन आंख कर्म करते भी उसमें योग का समावेश करें, तो वैसे भी घर में जब आरती करते हैं पूजा करते हैं तो आंख बंद होने लगती है धीरे धीरे, तो ऐसे कर्म, अब आंख बंद करके तो सारे दिन काम नहीं करेंगे, तो इसीलिए ऐसा। और लास्ट ये है लॉन्ग नोज, लंबी नाक इस बात का प्रतीक है, जैसे कुत्ता होता है कोई जानवर, सूंघते सूंघते जाते हैं, जहां पर अपना शिकार देखा फट से पंजा मारा खा लिया, ऐसे ही लंबी नाक माने अपना परिस्थितियों के अनुकूल हम अपना दिमाग को ओपन रखें। साथ में छोटा मुंह जो है कम बोलने का प्रतीक, और बड़ा स्टमक, पावर ऑफ एडजस्टमेंट, स्टमक खाने का प्रतीक भी है ना, अभी लंच भी होने वाला है ना, तो इसीलिए एडजस्टमेंट का ये प्रतीक है। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जीवन में कंप्लीट पॉजिटिव थिंकिंग, ये चार पांच बातें धारण करेंगे तो जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग सदा के लिए आ जाएगी। और जब पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तो क्या होगा, जीवन बहुत आपका सुखद होगा। इस रेफरेंस में मैं समाप्त करता हूँ एक प्रोफेसर साहब की बात से कि एक प्रोफेसर साहब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उनकी मिसेज आई, चाय का एक कप रख गई, चाय चीनी और चम्मच कि भाई जितनी चीनी की जरूरत हो डाल लेना। अब प्रोफेसर साहब न्यूज़पेपर पढ़ने में इतने तल्लीन कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि कब उनकी मिसेज आई, मिसेज नहीं छोटी बच्ची, डॉटर 2-3 साल की, 3-4 साल, और बच्चे जैसे क्यूट होते हैं, एक चम्मच चीनी की भरी चाय में डाल दी, दूसरी चम्मच भरी चाय में डाल दी, तीसरी भरी, उसने सोचा पापा का काम चलो मैं ही निपटा दूं, चीनी है, 4-5 चम्मच जब डाल दी तो सडनली प्रोफेसर साहब का ध्यान गया, अरे अरे बेटे ये क्या कर रहे हो, ये तो चाय बहुत मीठी हो जाएगी। तो बच्ची ने बड़े इनोसेंट भाव से कहा कि पापा ये तो मीठी कैसे होगी, जब तक आप इसे चलाएंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं, स्टर नहीं करेंगे, मीठी नहीं होगी, आप चाहो तो देख लो। तो उन्होंने बड़े बच्चे का दिल रखने के लिए ऊपर से थोड़ी सी चाय ली, पी के देखी तो वाकई फीकी थी बिना चीनी के, और फिर उन्होंने उसे मिलाई, मिलाने के बाद थोड़ा लिया तो बहुत मीठी हो गई थी। बस यही बात हम सबके जीवन से भी यहां लगती है। अभी आप आए हैं ना, कल शाम से ही आपने अपना जीवन रूपी चाय के अंदर चीनी डालना शुरू कर दिया। जो जो आपको क्लास मिल रही है ना, कल दादी जी ने आपको शिक्षा दी चीनी चम्मच नंबर 1, शीलू बहन की क्लास हुई चीनी चम्मच नंबर 2, और उषा बहन की क्लास हुई और चीनी चम्मच नंबर 3, सुमन बहन का, सभी का जो जो क्लास होगा चीनी तो चम्मच पड़ती रहेगी, लेकिन जीवन में मिठास कब आएगा, कब आएगा। इसीलिए आपको कल डायरी दी गई है कि डायरी में आप कुछ पॉइंट नोट करिए, और उसके बाद जब कमरे में टाइम मिले, अभी से देखो अब आपका नेक्स्ट लेक्चर खाने के बाद 5 बजे है, तो इतना तो घर में भी नहीं सोते होंगे, आराम भी नहीं, तो आप थोड़ा पन्ने पलट लेंगे, वो जैसे कि स्टर हो गया, और तब आपके जीवन में मिठास आ जाएगी, और तब आपके मुंह से भी वही शब्द निकलेंगे जो ब्रह्मा बाबा के मुंह से निकले थे कि पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।